दर्शन सभी दर्शनों में महान है। 12 दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन, 6 नास्तिक दर्शन। 6 नास्तिक दर्शन ईश्वर का स्वीकार ही नहीं करते हैं। अणुओं से परमाणुओं से सृष्टि बन गई और चलती है जैसे घड़ी बन गई, लेकिन घड़ी को तो पता नहीं है, घड़ी को तो बनाने वाला कोई है। ऐसे ही नियमबद्धता जो प्रकृति में चल रही है, फैक्ट्री में नियमबद्ध काम चल रहा है तो मैनेजर है या मालिक है, भले अभी न दिखे लेकिन है कोई, भले परदेश में देश में बैठा है लेकिन कोई न कोई उसका आयोजक डायरेक्टर आदि है। ऐसे ही जो कार्य होता दिखता है, ये वेदांत दर्शन के मुताबिक ईश्वर को स्वीकार किया जाता है। तो 6 नास्तिक दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही फिर तप आदि कर लेते हैं वे लोग, उससे क्षीण काय अथवा शांत मन हो जाते हैं, थोड़ा सामर्थ्य भी आ जाता है दैत्य आदियों को, और वो सामर्थ्य से अपना कुछ डिम डिम बजाते भी है, लेकिन मुक्ति लाभ अथवा आत्म आनंद उन्हें प्राप्त नहीं होता। अगर रावण को और कंस को आत्मानंद या मुक्ति लाभ मिलता तो उस मार्ग पे नहीं जाते, शोषण के मार्ग में। वेदांत दर्शन कहता है, अभी साइंस भी इसको प्रूफ कर रही है कि सुवर्ण के टुकड़े में भी कुछ हरकत हो रही है, इतना जड़ वस्तु, और पेड़ पौधों में भी हरकत हो रही है, चेतना है, तभी तो वो रस खींचते हैं ऊपर। दूध जड़ दिखता है लेकिन उसमें भी 4 घंटे के बाद दही हो जाता है, और बैक्टीरिया आदि चेतना वाले ही होते हैं। तो चेतन एक देशी नहीं हो सकता है, चेतन सर्वव्यापक होगा, तभी अणु और परमाणु में भी उसकी सत्ता का दर्शन होता है। वैज्ञानिक ढंग से भी कुछ वेदांत की बात लोग आज समझ सकते हैं। वेदांत दर्शन के सिवाय के जो दर्शन है वे ईश्वर को अपनी अपनी धारणा के मुताबिक अमुक जगह पर मानते हैं, लेकिन वेदांत दर्शन ईश्वर को ओत प्रोत मानता है। और वेदांत दर्शन के ज्ञाताओं का कहना है, अगर ईश्वर ओतप्रोत न हो तो ईश्वर का स्वभाव क्या है? कि ईश्वर का स्वभाव है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जैसे अग्नि अग्नि का स्वभाव नहीं छोड़ सकती, पानी पानी का स्वभाव नहीं छोड़ेगा, पानी को गर्म कर दो तो दिखेगा गर्म, लेकिन रख दो तो अपने शीतल स्वभाव में आ जाएगा। गर्मी को मंत्रों से अमुक विधि से थोड़ी देर के लिए उसके ताप को दबा दो, हो सकता है, लेकिन गर्मी का मूल अग्नि का मूल स्वभाव गर्मी है। ऐसे ही परमात्मा का मूल स्वभाव है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत है, ऐसा वेदांत दर्शन का कहना है। वेदांत को जानने वाले महापुरुष कहते हैं कि सत्य क्यों, कि सत्य की परिभाषा क्या है, कि रस्य सत्ता त्रिकाला अव्यभिचरति इति सत्यम। जिसकी सत्ता तीनों काल में नाश न हो उसको सत्य कहते हैं। जैसे ये फूल की पुखड़ी है अथवा रेती का दाना है, इसको विज्ञानी सब मिलकर भी नाश नहीं कर सकते हैं, पाउडर बना देते हैं, हवाओं में गायब कर देते हैं, लेकिन हमारी नजर से गायब होगा, उन परमाणुओं का कणों का अस्तित्व नाश नहीं हो सकता है। ये इसकी सत्यता हुई। रेती के कणे को घिस डालो तो उसके बारीक अति बारीक जिजे हो जाएंगे, हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा, लेकिन वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण भी उसके कहीं ना कहीं होंगे, हवामान में आदि आदि। तो ये ब्रह्म परमात्मा की सत्ता, उन्होंने अणु परमाणु आदि करके भी देखा तो उनमें भी थोड़ी हरकत हो रही है, चेतना है। तो ये ब्रह्म परमात्मा की, व्यापक ब्रह्म की चेतना है, और इतना सूक्ष्म है कि अपना जो ये भूताकाश देखता है उससे भी ज्यादा वो परमात्मा सूक्ष्म है। इसीलिए शुद्र अति शुद्र प्राणी जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते ऐसे बैक्टीरिया आदि उनमें भी चेतना है और अनुकूलता को पकड़ना और प्रतिकूल से फाइट करना इतना ज्ञान उनमें भी है। ठीक है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया। तो भगवान की सत्यता चेतनता और अनंतता है, वो कितना है कितने हृदय में है उसका कोई अंत नहीं, कितनी सीमा में है कोई अंत नहीं। माया परब्रह्म परमात्मा के व्यापक चैतन्य में माया एक कोने में ये जगत का विलास दिखा रही है। जैसे तुम्हारा परब्रह्म परमात्मा तत्व उसमें से स्फुरना हुआ, अब फुरना तो हुआ जरा सा लेकिन इतने मकान दुकान फैक्ट्रियां दिखी, बनाई मूल कहां से? संकल्प से। तो संकल्प दिखता नहीं, सूक्ष्म होता है, लेकिन संकल्प का विस्तार जो संकल्प माया है विस्तार जो है वो दिखता है। हकीकत में गीत गायक से बड़ा नहीं हो सकता है, नृत्य नर्तक से बड़ा नहीं हो सकता है, और चित्र चित्रकार से बड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे मकान मकान बनाने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। फिर भी जहां बैठो तो बनाने वाला 5.5 फुट का और मकान जो बना है हजारों फीट का हो सकता है। तो अब बनाने वाला अपने को उसके अंदर लाकर ससीम मानकर मेरे से मकान बड़ा, ऐसे ही अपनी मैं से ये जगत रूपी मकान बड़ा दिख रहा है। तो अपनी मैं केवल हृदय में है ऐसी बात नहीं है, जैसे व्यापक आकाश है केवल घड़े में ऐसी बात नहीं, घड़े का आकाश और महाकाश एक है, ऐसे उस परमात्मा की चेतना अपने दिल में अनुभव होती है, उसकी सत्यता उसकी चेतनता तो हम बुद्धि से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसका आनंद स्वभाव और अनंतता के अनुभव के लिए वेदांत दर्शन को समझना अनिवार्य होता है। उस समझ के लिए वेदांत के विद्यार्थी में योग्यता चाहिए। 4 शर्तें हैं, विवेक वैराग्य शत संपत्ति और मोक्ष की इच्छा। ये 4 गुण जिसमें हैं वो उस वेदांत के आखिरी अनुभव का अधिकारी माना गया। विवेक क्या? जगत नाशवान है, बदलने वाला है, नाशवान बोले अनंत है, अभी हमने कहा परिवर्तन ही नस धातु त्याग, परिवर्तन को परिवर्तन शब्द पर नस धातु लगकर नाश शब्द बना है। हमारी नजरों से जो ओझल हो गया हमने कहा नाश, फूल सुबह जैसे थे अभी नाश हो गए, मकान जो बना था तोड़ फोड़ के नाश कर दिया, लेकिन ईंटें और उसका सामान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उतने का उतना रहेगा। पानी की एक बाल्टी नाश हो गई, या तो मिट्टी में छुपी रही या तो बाष्पीभूत हुई या तो नाले में गई, लेकिन एक आधी बूंदी नाश नहीं हुई। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप और अनंत स्वरूप ब्रह्म, आनंद स्वरूप और अनंत है। तो उसकी सत्यता और ज्ञान चेतनता का तो अनुभव होता है। सत्यता उसकी क्या है कि राई के दाने मिट्टी का कण भी नाश नहीं होता, ये उसकी सत्यता है। पक्षी पशु आदि में उसकी चेतना दिखती है। मच्छर को कोई सिखाने नहीं गया कि इस प्रकार तू खून पिया कर, और कीड़ी को किसी ने स्कूल कॉलेज में पाठ नहीं पढ़ाया कि ये शुगर है और ये नमक है। ये शिवलाल काका की दाढ़ी है, इधर तू उलझ जाएगी, और ये आसाराम बापू का हाथ है, यहां तुझे मीठा मीठा प्रसाद का स्पर्श मिल जाएगा। कीड़ी को किसी ने कहा नहीं, हाथ को आकर चौंटेगी अगर रसगुल्ले को हाथ लगाकर हम बैठे, और काका की दाढ़ी से दूर भागेगी। उसे सिखाना नहीं पड़ा, कहना भी नहीं पड़ा। तो इतना ज्ञान तो उन अति छोटे जंतुओं में भी तो है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो यहां वेदांत दर्शन की बात स्वीकार करनी पड़ती है इतर दर्शनों को। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और योग, ये छह दर्शन है वेदांत। वेदांत दर्शन पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और वेदांत, योग और सांख्य। सांख्य माना वेदांत दर्शन, सॉरी सांख्य माना नहीं, सांख्य दर्शन और फिर वेदांत, वेदांत दर्शन। तो ये छह दर्शन जो है इनमें और दर्शन की अपेक्षा वेदांत परमात्मा को समग्र रूप में बताता है। तो साधक सिद्ध होने के बाद उसका पतन नहीं होता, इसीलिए शास्त्रों में सुना होगा योग भ्रष्टों की जायते, तत्व भ्रष्टो नहीं आया, योग भ्रष्ट हो सकता है। भक्ति मार्ग अच्छा है जिसको परिवार में, पुत्र में, धन में मोह ममता है उनके लिए इष्ट की भक्ति, देश की भक्ति, गुरु की भक्ति ये सहायक हैं, अच्छे हैं। इन जिनके पास विवेक है कि आत्मा अविनाशी है और जगत परिवर्तित है, आखिर सब छोड़ के मरना है और इंद्रियों से जुड़कर मन जो भी सुख पकड़ेगा वो छूटेगा छूटेगा छूटेगा, चाहे ब्रह्म लोक तक की वस्तु हो। तो ब्रह्म लोक तक का जो ऐश आराम या सुख सुविधा है वो काक की विष्ठा जैसी जिसको लग ले, ये विवेक वैराग्य की पराकाष्ठा है। ऐसा साधक मिल जाए ब्रह्मवेता को, ब्रह्मवेता ऐसे साधक को मिल जाए, चुटकी बजाते ही परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन हम लोगों की जब आसक्ति रहती है तो फिर जप, ध्यान, प्राणायाम आदि करते करते हमारी बुद्धि शक्ति का विकास होता है और विवेक जगता है। विवेक जगने से वैराग्य आता है। तुलसीदास जी ने कहा, जाने जीव तब जागा, कब जगे तुम, सुबह 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे, ना ना ये तुम न जगे, ये तुम्हारा खोखा शरीर जगा है, तुम नहीं जगे। जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। परमात्मा पद में रुचि और विषय विलास में वैराग। जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। तो विवेक, विवेक होने से फिर वैराग्य होता है। त्याग में वैराग्य में फर्क है। मैंने रसगुल्ले का त्याग कर दिया, देखा रसगुल्ला मुंह में पानी आया लेकिन त्याग की कसम है नहीं खा रहा हूं, आकर्षण बना रहा। लेकिन वैराग्य क्या है कि आया है लेकिन रसगुल्ला मुझे खींच नहीं रहा है, किसी ने दे दिया, आग्रह कर दिया, खा लिया तो खा लिया लेकिन वो हमें अपनी ओर खींच नहीं सकता, ये वैराग्य है। ऐसे ही जगत का तमाम सुख, धन, पत्नी, पति, पुत्र, परिवार, उसमें राग का अभाव। त्याग शुरुआत है लेकिन वैराग्य फल है। वैराग्य भी 3 प्रकार का आदि होती है, उसका फल भी अलग अलग होता है। मन वैराग्य, वशिकार वैराग्य, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। ओ महाराज, पर वैराग्य आ जाता तो एकदम फटाफट साक्षात्कार के तूफान हो जाता, सत्यम भी आ जाती वैराग्यवान को। जय जय, खाली वैराग्य की स्टेज है, विवेक के बाद वैराग्य में आ जाए उसकी शक्तियां बढ़ जाएगी। पहले सिर खपाता था और शरीर घिस डालता था, तभी जो नहीं कमाता था और आदर नहीं पाता था, जीवन में सचमुच में वैराग्य आ गया तो थोड़े से परिश्रम, न जैसे परिश्रम में संसार की सुविधाएं, सुख, मान उसका पीछा करने लगते। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, अब की ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है। वैराग्य अगर जिसके जीवन ते थी शू इतलू पाकू थई गयो तो ये सब बोलना बमणा। उस वक्त बुद्धि ऐसा ही काम करती है। कई साधकों का अनुभव है, कई साधकों की फरियाद भी है कि जब ईश्वर के रास्ते चले हैं तो फिर ये माया हमारा पीछा करते। बाबा जी मांगे उसके आगे और त्यागे उसके आगे। विवेक वैराग्य षट संपत्ति, षट संपत्ति माना छह साधन को एक माला में पिरो दिया, वो संपत्ति सच्चा खजाना है। दुनियादारों का खजाना उसके आगे कुछ भी नहीं है, सत्ताधीशों का खजाना उसके आगे कुछ भी नहीं, जिसके जीवन में ये षट संपत्ति का खजाना है। छह बातें, सम मन को रोकने की रुचि, मन को रोकने का अभ्यास प्रतिदिन, दम माना इंद्रियां दिखाए, इंद्रियां गलत भोजन के तरफ ले जाए रोक दिया, सम दम तितिक्षा ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्य को पाने के लिए थोड़ा दुख मान अपमान सह लिया। बड़े अफसर हैं, बड़े सेठ हैं, बड़े साहब हैं, लोगों के बीच साधारण आदमी के साथ बैठना पड़ता है, ये अगर पकड़ लिया तो सत्य के साक्षात्कार का वो अधिकारी नहीं हो सकता। उसे तितिक्षा सहनी पड़ती, भले विश्व का सम्राट दिखता हो लेकिन आत्मज्ञान पाना है तो नारायण हरि करके भिक्षा मांगता है, चल रहे चल आगे जा, स्वीकार कर लेता है, गुरु के चरणों में रहता है, गुहारी करता है, राजा भरत भी जैसा आदमी, सिर में खाक डाल देता है, अंग पे भभूत रमा लेता है, फिर भी सौदा सस्ता है क्योंकि जो जलना जल जाने वाला शरीर है उसी का सदुपयोग तो कर रहा है और क्या। काम क्रोध और लोभ मोह की, यश का मोह, धन का मोह, परिवार का मोह, ऐसे काम आदि, काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। तो जिसके जीवन में षट संपत्ति का ये तीसरा गुण आ जाता है तितिक्षा, सम दम तितिक्षा समाधान, ईश्वर के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति हिलाने वाली बातें, हिलाने वाला वातावरण आ जाए तो अपने समाधान करके मन को ले आना चाहिए। संसार प्रवाह के तरफ बहने वाला तो आएगा वातावरण, क्योंकि बहुमति जगत की है, भक्तों की बहुमति नहीं होती। उस वक्त समाधान करे, अब जगत भगत ने हो देऊ चाल्या करे, हरि ओम तत्सत, अपन मन तू राम भजन कर, जग मरवा दे, ऐसे करके समाधान लाना पड़ेगा। नहीं तो जगत की तराजू में तुलने वाला आज तक महापुरुष कोई सफल नहीं होगा, कोई भक्त सफल नहीं होगा। के तो खेरो कींदा, के तो कींदा, कोई बहकाएंगे, कोई रोकेंगे, कोई टोकेंगे, कोई निंदा करेंगे, कोई कुछ करेंगे, लेकिन तू ईश्वर के प्रति झुकता रहे, इस जीवन में समाधान, वितर्क कुतर्क आदि नहीं। सम दम तितिक्षा समाधान उपरती, जैसे भोजन किया औक दिया तो फिर ऐसा अभिमान नहीं होता कि मैंने देखो 25 रुपए की आइसक्रीम और केसर कस्तूरी वाला माल खाया, सबका सब औक दिया, देखो कितना अच्छा है। नहीं तुमने 4 पैसे की पान पूरन पूरी खाई हो और वमन कर दिया हो, चाहे 50-100 रुपए की प्लेट खाकर तुमने वमन किया है, लेकिन तुम्हें वमन किए हुए वस्तु का गर्व नहीं होता। ऐसे ही तुमने झोपड़ा छोड़ा है कि महल छोड़ा है, 1 लाख छोड़ा है कि 1,000 करोड़ छोड़े हैं, फिर उसकी चिंता ना कर। जैसे उल्टी किया हुआ पदार्थ फिर आदमी चाटने की इच्छा नहीं करता, ऐसे ही भोग पदार्थ सत्ता वैभव छोड़ने के बाद मैंने छोड़ा है इसकी उसे गर्व वाली वृत्ति नहीं होती, उसको उपरती बोलते हैं। सम दम तितिक्षा समाधान उपरती। छठा धन यह है कि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का चिंतन, कम से कम 10 मालाएं, कम से कम 1,000 बार तो जरूर करे, ज्यादा तो करना ही चाहिए, कम से कम ना करे। ये षट संपत्ति, अब षट संपत्ति एक में आ गई तो विवेक वैराग्य षट संपत्ति। मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा जब तक तीव्र नहीं होगी तब तक सब दुर्गुण नहीं जाएंगे। मुक्ति की इच्छा जब तक तीव्र नहीं होगी तब तक सब पाप नहीं जलते। तुलसी पुरो के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। ईश्वर प्राप्ति की जितनी तीव्र इच्छा होगी, रामकृष्ण परमहंस को किसी ने बहकाया, तुम्हारे गुरु गुरु मानते हो तो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे है। रामकृष्ण बोलते हैं मारो गुरु कलाल खाने जाए तो पर मारा माते मारो मारो गुरु नंदराय। कबीर जी के लिए कितना कुप्रचार हुआ, वैसा वैसा आदि उनके गले पड़ी और क्या क्या पंडितों ने फैलाया। हर युग में ऐसा होता है। लेकिन चलुका मलुका को कबीर ने कहा कि भाई सब लोग निंदा कर रहे हैं, वर्षों तक तो अफवाहें उड़ रही थी लेकिन आज तो प्रत्यक्ष तुमने देखा और सब भाग गए, सारे चेले गद्दार होकर भाग गए, तो तुम दो क्यों बैठे हो। चलुका मलुका को पूछा, चलुका मलुका ने कहा कि आप दारू पीते हैं या नहीं पीते वो हमें नहीं देखना है, आप मांस खाते हैं या नहीं खाते हैं और ये गणिका सत्य बोलती है या झूठ बोलती है ये सोचना नहीं है, लेकिन तुम्हारे चरणों में बैठकर हमें शांति मिल रही है, तुम्हारे नजदीक आते हुए हम ईश्वर के करीब हो रहे हैं, इसलिए हमें लाभ लेना है। शराब न पीने वाले लोग कई होंगे, मांस खाने न खाने वाले लोग कई होंगे और वैसा आदि कलंक न लगाती होगी, ऐसे कई ईमानदार लोग होंगे, लेकिन उनके चरणों में बैठने से हमें आत्मज्ञान आत्मशांति ध्यान हमें फायदा नहीं होता। चितेरा स्वयं कुरूप हो लेकिन उसके चित्र सुहावने हो तो क्या नहीं लेने चाहिए। कंदोई खुद मिठाई न खाता हो तो क्या उसकी सुंदर मिठाइयां नहीं लेनी चाहिए। और कारीगर जो करिया है वो स्वयं बढ़िया महल में नहीं बैठता हो रहता हो तो क्या उसका सुंदर बनाया हुआ महल मकान में नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार का जो चलुका मलुका का दृष्टिकोण था, ऐसा मोक्ष की इच्छा वाले साधक का दृष्टिकोण होता है। हम श्री चरणों में गए बाबा जी के पास, 40 दिन इंतजार किया, बाद में गुरुदेव पधारे और फिर 30 दिन रहने को मिला, तो हमारी आदत थी पूजा करके ही फिर कुछ खाना पीना। तो आश्रम में तो ऐसा महादेव का मंदिर नहीं था, आश्रम में तो दिल ही भीतर के मंदिर में जाने की बात थी, लेकिन हमारी आदत थी बाहर के मंदिर में जाने की। तो मैं लोटा लेकर जल का दूर आदि लेकर शिव जी पूजा करने जाता था, आश्रम में रहता था और दूर एक आश्रम था, तो दूर आश्रम था वहां का जो महाराज था नीम करौली उसका नाम था, तो उसने बुलाया मेरे को, अच्छी उसकी प्रतिभा थी, कई उसकी संस्थाएं भी थी, वो एक आध श्लोक मेरे को बोला कुछ सुनाओ कहां से आए हो, एक आध मैंने श्लोक बता दिया। बोले तो इतना जवान कहां से कैसा यहां रहो ये सब तुम्हारा ही है। मैंने कहा मैं मेरे गुरुदेव वो हैं और उनके चरण, तो वो गुरुदेव को देखकर ईर्ष्या होती थी उसको, क्योंकि उनका कुछ तांत्रिक वांत्रिक था और गुरुदेव का तो वेदांत का शुद्ध निचोड़ था। तो उसने मेरी श्रद्धा थोड़ी हिलाना शुरू कर दी, मैं तो उठ खड़ा हो गया। अगर मैं उसकी बातों में आ जाता अथवा उसकी संस्थाओं के प्रलोभन में आ जाता तो शायद ये आत्म प्रसाद से वंचित ही रहता, लेकिन मैं भी ऐसे ही करता, धागा टूना फूना या कुछ न कुछ। तो विवेक तीव्र हो, इसलिए पहला विवेक चाहिए, अविनाशी आत्मा अविनाशी, और जगत का मठ मंदिर पद प्रतिष्ठा विनाशवान है, तो नाशवान चीज पाकर अविनाशी का त्याग करना है। रामकृष्ण ने कहा वे लोग बड़े अभागे हैं जो नश्वर देह के साधनों को पाने के लिए शाश्वत आत्मा का घात कर बैठे। तुलसीदास जी ने कहा सरब धुनि धुनि पछता वही जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, मनुष्य देह पाकर जो भवसागर नहीं तर पाए तो कृत निंदक मंदमति, वो मंदमति है, आत्महन आत्महत्या रहे अधोगति जाए, गर्भों में जाना अधोगति तो है, वो मंदमति है। लोगों की नजर से बड़ा विशाल होशियार लिखे लेकिन जो आत्मज्ञान से दूर होता है परमात्मा प्राप्ति से दूर होता है वो मंदमति है। तुलसीदास जी ना मंदमति आत्महन अधोगति जाए। तो विवेक वैराग्य सत संपत्ति मोक्ष की इच्छा नरेंद्र ने रामकृष्ण को कहा। अब कृपा कर दो, गिरह सहा नहीं जाता। उन्हें सच चलो गंगा जी में, तैरना तो जानते ही हो, गंगा में गोता मारो। गंगा में गोता मारा नरेंद्र ने, जो बाद में विवेकानंद बने। गर्दन पकड़ ली रामकृष्ण ने। अब गंगा जी के पानी में डोक दबाकर कोई रख दे तो क्या, उस समय क्या होगा, क्या याद आएगा। जितनी वो सह सके उससे भी दो पांच सेकंड ज्यादा दबा रखी, असह्य हो गई, छोड़ दिया। हाँ वो देख रहे हैं, गुरु के सिवा और कोई व्यक्ति होता तो खबर ले लेते, लेकिन सिर झुकाया है, गुरुदेव माने। बोले बेटा फिर एक गोता मारो, गुरु आज्ञा ही केवल मारे गोता। फिर रामकृष्ण ने वही किया, पहली बार जितना दबाया उससे अब की बार थोड़ा और ज्यादा देर रखा पानी। और क्या अनुभव होता होगा, चलो अपन जरा साबरमती में बोलो। तीसरी बार उससे ज्यादा देर गर्दन दबा रखी। बोला क्या याद आया, जलेबी याद आई, रसगुल्ला याद आया, किसी को गिराना याद आया या चढ़ाना याद आया, परोपकार करना याद आया या परोपकार लेना याद आया, क्या याद आया, शादी करने की इच्छा थी कि ब्रह्मचारी रहने की इच्छा थी, क्या इच्छा? बोले गुरुदेव न ब्रह्मचारी रहने की इच्छा थी, न शादी करने की इच्छा थी, न खाने की इच्छा थी, न पकड़ने की इच्छा थी, न छोड़ने की इच्छा थी, न लेने की इच्छा, कोई इच्छा नहीं थी, बस केवल बाहर निकलूं, बाहर निकलूं। बोले तीनों बार में कौन सी इच्छा रही, बोले बस बाहर निकलने की। उस समय तो सारी इच्छा गए, बाहर निकलने के सिवा और कोई मांग नहीं थी। अरे बेटा ये तीनों बार की इच्छा को जब एक बार में फोर्स करेगा उसी क्षण ज्ञान होगा, साक्षात्कार होगा। ऐसे पानी में मुंडी दबा दिया जाए तो बाहर निकलने के सिवाय और कोई छटपटाहट नहीं होती, अगल से बगल से इधर से उधर से बाहर निकलूं। ऐसे ही इस संसार सागर में माता के गर्भों की परंपरा के दुख से बाहर निकलूं, ऐसी तीव्रता होगी उसी क्षण, यहां से वहां वहां से एक। तो वेदांत दर्शन के विद्यार्थी के लिए चार प्रमाण पत्र चाहिए, विवेक वैराग्य सत संपत्ति मोक्ष की इच्छा। हाँ जी पूरा कर दो।